चल रही यहाँ पर आर्ट ऑफ बैलेंस की, तो उसके अंतर्गत आज शक्ति और स्नेह का बैलेंस कैसे हो, कहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो इस चीज़ का बैलेंस अगर होता है, इंग्लिश में लव एंड पावर का बैलेंस कैसे हो, तो स्नेह और जो शक्ति है, तो ब्राह्मण का तो स्वाभाविक नेचर है कि ब्राह्मण अर्थात स्नेह का मास्टर सागर भी है, तो मास्टर सर्वशक्तिमान भी है। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको कहाँ, किस समय, किस घड़ी, किस स्थिति में इस सब चीज़ को बैलेंस रखना होता है, तो इस सभी चीज़ों का बैलेंस रखने की अगर कला आ जाती है तो हमारा जीवन सहज, सरल और स्वाभाविक हो जाएगा, और किसी भी प्रकार की झंझट हम सब जो मोल रहे हैं उसमें इजी हो जाएगा, तो हम सबका समय, शक्ति, संकल्प और एनर्जी बच जाएगा, और ये एनर्जी को तीव्र पुरुषार्थ करने में लगा सकेंगे। इसीलिए हम सबको कि कहाँ स्नेह को प्रयोग करना है, कहाँ शक्तियों को प्रयोग करना है, और उसको हमने करने सीख लिया तो फिर हम सब इस सारी बातों का फायदा ले सकेंगे। इसीलिए पहले तो हम जानेंगे कि सिर्फ स्नेह अगर है, शक्ति हमारे पास में नहीं है, तो शक्ति का बैलेंस रखना नहीं आया तो हमारा जीवन किस आधार से आगे बढ़ेगा, और हम इतने जो प्यारे हो जाएंगे कि जो न्यारा बनना ही मुश्किल हो जाएगा, और हम कभी कभी ऐसा हो जाते हैं कि इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि स्नेह को इस्तेमाल करना ही भूल जाते हैं, तो इसके कारण से कई प्रकार की विघ्न, कई प्रकार की बाधा हमारे जीवन में आने लगती है। इसीलिए हम सबको इस बात में ज़्यादा अटेंशन देना होगा कि दोनों तरफ का बैलेंस अगर ठीक है तो गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो उसमें हम सबको कई प्रकार की निशानियां हमको मिलेंगे, उसमें संतुष्टता होगी, तो संबंधों में आने वाले लोगों को भी हम सब खुश कर सकेंगे और हम भी खुश रह सकेंगे। इसीलिए हमको जानना होगा कि कहाँ हम उस ट्रैक से हट रहे हैं अथवा उस ट्रैक में साथ साथ लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर हमको बीच बीच में चेकिंग सहित आगे बढ़ना होगा। तो इसीलिए जो सिर्फ प्यार से आगे, सिर्फ प्यार में ही चल रहे हो, शक्ति का बैलेंस अगर नहीं होता है तो उसकी क्या निशानियां हैं, क्या उसके बेफायदे हैं, तो उसकी निशानियों में हम देख सकेंगे, अपने ऊपर भी चेक कर सकेंगे कि कहाँ ये निशानियां हमारे जीवन में तो नहीं है, या तो इसके जो दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ रहा है तो हम इसके शिकार तो नहीं बन रहे हैं, इसके ऊपर भी हम चेकिंग करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्नेह में सिर्फ चलता है तो उसका जो जीवन होगा जैसे कि ढीला ढाला जीवन होगा, क्योंकि कोई अगर उसको आंख दिखाने नहीं होगा तो ढीलम ढालम बन करके चलता रहेगा, क्योंकि उसको प्यार सब तरफ से लाड़ प्यार मिल रहा है तो उसको इस सब चीज़ों में तो उसमें इस सारी चीज़ों में उसको अटेंशन देने की जरूरत नहीं होता है। तो ये समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता भी ज्ञान में चलते हैं तो बच्चे भी ज्ञान में चलते हैं, तो इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा इस बातों में, क्योंकि ये थोड़ा सा माँ बाप भी बच्चा है अभी छोटा है आगे जाके सीख जाएगा जान जाएगा, तो इस तरीके से हम उन सबको फेस जैसे कि हम ट्रीट करते हैं, इसीलिए वो जैसे कि ढीला टाला जैसे लाइफ होगा उनका और उस शक्ति का बैलेंस कर नहीं पाते हैं। तो ब्राह्मण बनते ही हर चीज तुरंत ही आ जाती है ऐसी भी बात नहीं है, सहस्रों पापड़ बेलने के बाद उसमें पूरा फोकस करने के बाद ही बाबा ने दिया हुआ जो गुण है शक्ति है जो सारी बैलेंस की जो टेक्निक बाबा ने बताए हैं वो बाद में धीरे धीरे आती है। तो इस सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए समय अनुसार धरनी के हिसाब से हम उस चीज़ को कितना ट्रीट कर पा रहे हैं। तो दूसरा होगा लक्ष्य और उद्देश्य से जैसे कि उसमें कोई फोकस नहीं होगा, सिर्फ स्नेह ही मिल रहा है प्यार ही मिल रहा है सब तरफ से, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो लक्ष्य की तरफ ज़्यादा अटेंशन नहीं होता है, सिर्फ सब चल रहे तो हम भी चल रहे हैं वो चल रहे तो हमें भी चलना है, ऐसी सिर्फ अटेंशन ही रहता है लेकिन खास प्राप्ति की तरफ ध्यान नहीं रहता है। तो फिर उसमें देखेंगे नाच नखाड़े बहुत होंगे, तो उससे सब सारे बातों में क्या होगा नाच नखाड़े होंगे। तो ये चीज़ें सेंटर में भी हम शुरू शुरू में आते हैं तो बहने लोग है ना थोड़ा सा अभी नया है, अभी जस्ट बाबा का बच्चा बना है उसके स्वभाव संस्कार की कोई टीट नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा दिन चलने दो बोल करके वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय वो नया नया होता है तो वृद्ध दुनिया की हवा खा करके आया होता है तो उसके कारण से ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा इसको रहने दो, तो बाद में जा करके उस संस्कार उसके अंदर हावी होने लगता है। तो उस संस्कार हावी होने के कारण से दीदी लोगों ने तो देखा था कि कुछ समय आगे जाने के बाद में संगठन में आने के बाद में वो देख लेगा सुन लेगा सीख लेगा समझदार बन जाएगा, इस भाव से उन्होंने छोड़ा हुआ होता है, लेकिन आगे जाकर के संस्कार वो हावी होती जाती है और उस संस्कार कड़क होता जाता है, तो आगे जाकर के हमारे दीदियों को ही थोड़ा सा गाइड करने लग जाते हैं तो उस समय लगता है कि कुछ टाइट करने पड़ेंगे, क्योंकि पतंग ज़्यादा लू छोड़ा जाएगा तो फिर गिरने का चांस होता है, तो टाइट करेंगे तो फिर उसमें भी मार वही चीज़ें होती हैं। तो उस समय मैं प्यार से और शक्ति से कैसे मैं इसको बैलेंस रख सकूं, और जो समझदार होंगे काफ़ी समय से ज्ञान में चल करके जो खूबी आए होंगे जिसके पास में वो तो अच्छी रीति से ट्रीट कर सकते हैं उनको, लेकिन जहाँ नया सेंटर खुला होगा नए नए बहने होंगे लंबे समय का जिनके पास अनुभव नहीं होगा तो उस समय ये समस्या आती है, और उस समस्या के कारण से कई बार हम लोग ने देखे भी है सेंटर में ऐसे भाई लोग जो पब्लिक कनेक्शन में होने के कारण से वो जैसे कि VIPs की सेवा भी कर सकते थे और VIP की सेवा भी हुई है उनसे, लेकिन लास्ट में उन्होंने अपने संस्कार को परिवर्तन नहीं कर सके तो उस समय टाइट रूप से इस ला को है ना स्नेह को उन्होंने शक्ति रूप में प्रयोग करके थोड़ा सा कुछ करनी पड़ी तो उस समय पतंगे टूट गई और कहीं झाड़ी में जाके फंस गई। कभी रिटर्न आएगी या नहीं आएगी बाबा बोलता है हट्टी तो एक ही आना तो सबको है, लेकिन उस समय समय संकल्प एनर्जी सब गंवाने के बाद में अगर होश आता है तो उसके कोई माने नहीं रहता है। तो ऐसे लोग में जैसे कि जो छोटी छोटी जो कर्म में जो बेपरवाह होते हैं कोई भी कर्म अगर हम करते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में, उद्योग धंधा में, व्यापारों में इस सब चीज लागू किया जा सकता है। कोई अपना बड़ा व्यक्ति होता है, ज्ञान में चलता है, वो भी उसी व्यक्ति उसी स्टेट का होता है, तो अपने स्टेट वालों को थोड़ा सा प्यार करके आगे बढ़ाने का होता है, तो उनके प्यार के कारण से, कभी आंख न दिखाने के कारण से कर्म में भी जैसे कि बेपरवाह होते हैं, करे तो भी ठीक, न करे तो भी ठीक, एक दिन का काम 3 दिन के बाद करे तो भी ठीक, या 3 दिन का काम 1 ही दिन में करो तो भी कोई बोलने वाला नहीं होता है। तो इसलिए वहां पर भी शक्ति का प्रयोग अगर होता है तो फिर उसमें उनको अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं सिर्फ स्नेह जीवन होने से क्या नुकसान है, इसकी क्या निशानियां है, इसके बारे में बता रहा हूं। तो उसके बाद में ऐसे व्यक्ति में भीतर से भरपूरता न होने के कारण से छोटी छोटी बात में घबरा जाते हैं। फिर कोई परिस्थिति आ गई, कोई समस्या आ गई, कोई बातें होती है, तो क्योंकि अंदर से भरा नहीं है, भरपूरता नहीं है, तो परिस्थिति समस्या में घबराने की, जैसे कि उनको शक्ति न होने के कारण ऐसी निशानियां दिखाई पड़ता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति ऐसे तो प्यारे होने के कारण से ऐसे व्यक्ति के दोष बहुत होते हैं, जैसे कि दोस्त अलो आओ करने वाले जो आदत वाले होते हैं, तो दोस्तों की तादाद होती है, तो इसके कारण से जैसे कि वो न्यारे नहीं बन सकते। फिर जो बाहर मुक्ता ज़्यादा होता है, बाहरी बातों में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो समय पर न्यारे नहीं बन सकते, उस समय फिर शक्ति का अनुभव नहीं हो सकता है। तो ये सब बातें हैं। तो जैसे कि आगे अगर हम देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को समस्या परिस्थिति के ऊपर फेस करने की जो ताकत अंदर से होनी चाहिए, और लंबा समय का अनुभव हमारे पास में ऐसी माया पर विजय पाने का, माया पर कहीं पर हमने जीत पाई हुई अनुभव अगर हमारे पास में होती है ना, तो हम सहज रूप से जीत पा सकते हैं, लेकिन उस समय यह अनुभव न होने के कारण से हम उसमें फेल हो जाते हैं। तो उसमें फिर हम सब जैसे कि आधारित जीवन होता है हमारा उसमें, क्योंकि हम जैसे कि स्वतंत्र नहीं हो सकते, किसी न किसी के आधार से हम चल रहे हैं, तो इसके कारण से आधारित जीवन होगा, और हम कोई भी ऐसी चीजों में जजमेंट नहीं ले सकते हैं, कोई ना कोई पुश करने वाला चाहिए उसको, क्योंकि शक्ति नहीं है आत्मा में। तो फिर उसमें ऐसे लोगों के पास में अनावश्यक जो इन्फॉर्मेशन, अनावश्यक जो जानकारियां हैं ना, बहुत इकट्ठी होती है, क्योंकि जब कोई ने जैसे शक्तिशाली आत्मा होती है तो शक्ति के कारण से वो बाहरी बातों में उतना ज़्यादा नहीं जाती है, लेकिन उसकी जो भरपाई अगर शक्तिशाली नहीं है तो दूसरी और चीज़ों से वो अपनी भीतर की संतुष्टता को भरपाई करनी चाहती है। तो फिर आज तो सोशल नेटवर्क ने सारी दुनिया को है ना जाल में फंसा के रखा है, तो उस समय तो जैसे कि दोस्तों को मिलने के लिए ग्राउंड में जाना पड़ता था, मैदान में जाना पड़ता था, खेलकूद में भाग लेने पड़ते थे, तब हम दोस्तों के बीच में होते थे, लेकिन आज ये समय नहीं है, सबके जेब में दोस्त बैठे हुए, विश्व ब्रह्मांड से कनेक्शन है आज मनुष्य आत्मा, नए नए लोगों के साथ में नए नए दोस्ती बढ़ती जाती है, तो उस समय ऐसे कि उनको हर नए चीज पाने के लिए नए चीज को सोचना पड़ता है, तो उसमें फिर हमारा एनर्जी उस बातों में चली जाती है। और ऐसे जो कमजोर व्यक्ति होंगे ना, तो हमारी यज्ञ में जो नियम मर्यादा जो श्रीमद बने हुए हैं उसमें समझौता कर लेते हो, क्योंकि शक्तिशाली नहीं है, तो कभी अमृत वेले के ऊपर ही मर्यादा जैसे कि समझौता कर लेते हैं। और ऐसे लोग बहुत चलाख भी होते हैं कि वो क्या बोलते हैं, थोड़ा कभी लेट हो जाता है, उठ गए, कभी नहीं उठे, तो थोड़ा 5-6 बजे भी अगर नींद खुल जाती है ना, तो अभी इराक में जो 12 बज रहा है, माना 3:30 हो रहा है, 4 हो रहा है, तो उसी समय उठा, कुछ क्या नुकसान हुआ है, तो इस तरीके से वो तो ऐसे बहुत बातें बनाने में जो मायूर होते हैं। तो इसका मतलब जो है ना, मनचाही जीवन होगा, मनमत वाला जीवन होता है, मनमानी वाला जीवन होता है इसे। तो मनमानी वाला जो जीवन होगा तो उसमें जैसे कि उसको कुछ ना कुछ जैसे कि जो मन में आता है वही करने की आदत होती है। तो मनमानी वाला व्यक्ति कभी बुद्धिमान नहीं बन सकता, बुद्धिमानी नहीं बन सकता है। बाबा ने तो जो ज्ञान की बातें सुना करके हम सबको बुद्धिमान बनाया है, तो मनमानी वाला कभी बुद्धिमानी नहीं बन सकता है। हाँ, बुद्ध बन जाता है तो उनको जैसे कि चढ़ती कला का भी अनुभव नहीं होता है। हाँ, और न ऊपर जा रहे न नीचे, न आगे जा रहे न पीछे जा रहे, ठहर जाता है पुरुषार्थ, ठहर जाता है। हाँ, तो उसको मजा नहीं आता है जीवन में, जैसे कि धक्के से चल रहे ऐसा महसूस होता है। और ऐसे व्यक्ति को दिल से कोई रिगार्ड नहीं देता है, क्योंकि सबको पता है, हम सबको पता है, हम सब ऐसे ग्रुप में कहीं होते हैं तो भी अगर वो बोलते हैं कि यो व्यक्ति बातें तो मीठी मीठी करता है, फिर भी इसके पास में लड़ने झगड़ने का संस्कार नहीं, प्यार से चलता है, लेकिन जो समय पर न उड़ता है, रूटीन इसका ठीक नहीं, तो लोगों की नज़र में थोड़ा सा उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो कोई काम हिम्मत से साहस रख करके कोई नया काम किया जाए, कुछ नया योजना बना करके पुरुषार्थ किया जाए, ऐसा कभी और ये रिक्स लेने नहीं चाहते। जैसे गाड़ी चल रही वैसे गाड़ी चलती रहे, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। जैसे कि आनंदमय जीवन है तो उसमें कोई फेस करने वाली बातें आए उनको अच्छा नहीं लगता है। तो यह तो दो कुछ पॉइंट हुए हैं कि जो स्नेह से चलने वालों की निशानियां बताई। तो उसमें अब जो सिर्फ स्नेह से चल रहे थे तो इस सब परिणाम थे, तो अभी दूसरी बातें हम वो चर्चा करेंगे कि जो सिर्फ शक्तिशाली मानते हैं अपने को, शक्तिशाली समझते हैं, ऐसे तो ये भी ब्रह्म है, ये सभी भ्रांतियों में जीने की बातें हो जाती है। फिर भी इसमें दो चार पॉइंट हमने निकाले हैं। जो शक्तिशाली मानता है, स्नेह का जो बैलेंस नहीं कर पाता है, उसके जीवन में जैसे कि वो भी रूखा सूखा जीवन होता है, तो उसका भी निशानी ये है, स्नेह न होने के कारण से वो रूखा सूखा जीवन उसका दिखाई पड़ता है। और कुछ कोई जीवन में रस नहीं ऐसा अनुभव करता है वो, क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हैं, अभी स्नेह का जो बैलेंस उसके पास में नहीं आई है, तो स्नेह करना उसको नहीं आता है, ये भी कारण हो सकता है। तो दूसरी बातें हैं हमने, जो उसमें भी हम सब जैसे कि स्नेह तो नहीं है, सुखी जीवन जैसे कि ढीले डाले हो जाते हैं। दूसरी बातें हमने ये देखा, जो कनेक्शन से दूर हो जाते हैं, जैसे कि उसके पास में जो ठोस जजमेंट करने की कला नहीं होती है, लोगों से दूर दूर रहने चाहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं ना, जैसे कि लोगों से कटे रहने चाहते हैं। समझदार तो मानते हैं अपने को, और फिर वो दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाले जैसे कि संस्कार होता है। क्योंकि खुद जाने हुए थे, कुछ बुद्धि के अभिमान होने के कारण से तो टांग अड़ाने वाले लगते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे थोड़ा सा खामोश भी होंगे, गंभीर भी होंगे। जो शक्ति की जो पहचान दिखाई है, जो खामोश होते हैं, गंभीर होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास में कोई व्यक्ति नजदीक से हिम्मत से जा भी नहीं सकता है, क्योंकि वो गंभीर लगता है। तो प्यार से जो बातें करते हैं, जो प्यार का शेयर करते हैं, तभी तो व्यक्ति उनके आगे पीछे होते हैं। तो प्यार नहीं देगा तो सिर्फ काम चलाने तक ही लोग उसके कनेक्शन में रिलेशन में रहते हैं। तो उसमें हमने ये देखा कि जो व्यक्ति इस प्रकार के संस्कार से पीड़ित है, जैसे कि इसको भी क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, ये भी इसको कह सकते हैं। तो उसमें हमने ये भी देखा, जैसे कि किसी बातों में उनका पंक्चुअल रेगुलर होते हैं वो लोग शक्ति के कारण से, तो उसी में फंस जाते, उसी में ईगो आने लग जाता है, उसी में अहंकार आने लग जाता है उनको। और फिर ऐसे व्यक्ति को देखा जाए तो ये मियाँ मिठू होते हैं ज़्यादा, अपनी बातों को चढ़ा बढ़ा के लोगों को सुनाना, लोगों को बताना, ये भी करते हैं, मैं हूँ ऐसा। तो इसमें फिर ऐसे व्यक्ति को कोई दिल से रिगार्ड माना, जैसे प्यार नहीं मिलता ऐसे व्यक्ति को, और प्यार न मिलने के कारण से जैसे कि सूखा जीवन होता है। तो उसमें थोड़ा सा बुद्धि भी होने के कारण से क्या होता है, बुद्धि के अहंकार आने लगता है। तो बुद्धि का जो अहंकार जो आता है, आती है, तो व्यक्ति जैसे कि बुद्धि का अहम, तो बुद्धि का अहंकार दिखाई पड़ता है कि ये व्यक्ति में इतना ज्ञान है, इतना ध्यान है, फिर भी अपना अहंकार को छोड़ा नहीं, तो ऐसी महसूसता उस व्यक्ति के जीवन से दिखाई पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति जैसे कि लोगों से जैसे कि कटे रहते हैं और लोगों को डरवा के रखते हैं क्योंकि खुद ही डरे हुए होते हैं अंदर से, तो इसके कारण से उस दूसरों को भी डरा के रखते हैं। तो उसके नजदीक ऐसे बिना काम से कोई काम बनाना होता है, कोई काम लेना होता है, तभी व्यक्ति कनेक्शन में आते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमने देखा है कि दूसरों को नीच दिखाने की भावना भी रहती है, उनको ये पता नहीं रहता है कि संगम युग है, हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही परिवार से हैं, हमको स्नेह से चलना चाहिए, ये नहीं रहता है उनको कि दूसरों को जितना है ना दबा सके, नीचे दिखा सके, इस प्रकार की भावना उनके पास रहती है। तो फिर ये आगे देखा है कि ऐसे व्यक्ति अंदर से खोखले होते हैं, दिखावा तो बहुत करते हैं, जैसे कि शिमला मिर्ची बाहर से टिपटाप रखता है लेकिन अंदर खोखला होता है। तो इसी रीति से उसके जीवन भी जैसे कि अंदर से खालीपन की महसूसता होती है, जहाँ स्नेह से भर जाना चाहिए, स्नेह न होने के कारण से खालीपन की महसूसता होती है। तो फिर उसके पास में जैसे कि दोस्तों का जो आना जाना होता है बहुत कम होता है, दोस्तों से दूर रहते हैं, उस दोस्तों का अभाव होता है, जो उनके पास में दोस्ती करने का भी टेक्निक नहीं होती, और दोस्तों को तो स्नेह चाहिए, अगर स्नेह नहीं होता है तो यह समस्या दिखाई पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को जैसे कि मूढ़ी व्यक्ति मानते हैं, इसका कब क्या मूड हो जाएगा, क्या भरोसा है ना, इसीलिए लोग डरे डरे रहते हैं, मूढ़ी व्यक्ति है, कभी भी कुछ बोल देगा, कभी भी कुछ अचानक इसका मूड चेंज हो जाता है, ऐसे बोलते तो उसके बाद में हमने देखा है कि इनके पास में हंसना मुस्कुराना ऐसी जो होती है ना, वो जैसे कि दूर की बात हो जाती है, स्नेह ही लोगों को सब कुछ सिखाती है, लेकिन स्नेह के अभाव में जैसे कि दोस्तों से भी कटे हुए रहते। तो फिर हमने देखा है कि किसी भी बातों से संतुष्ट नहीं रहते व्यक्ति, किसी भी बातों को कुछ न कुछ उसमें खामियां निकालना, ये उस नेचुरल संस्कार हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति में यह भी देखा गया है कि किसी की गलती को अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना, दूसरों को दोषी ठहराना, इस प्रकार की संस्कार रहती है। तो इसीलिए हम सब इसमें अगर कहीं है तो इसमें भी हमें चेक करने की जरूरत है कि ये चीज हमको दुखी कर रही है, तो इससे हमें कैसे निकलना चाहिए। तो अभी हमने ये सब बातें देखा कि ज़्यादा प्यार में होने से, प्यारे बनने से प्यार की महसूसता जैसे कि अपने को समझ के रखते हैं तो ये निशानियाँ देखें, तो सिर्फ शक्ति ही होने से हमें क्या क्या परिणाम भोगने पड़ते हैं और ये व्यक्ति कैसे रहते हैं, इसकी निशानी उसके बेफायदे हमने देखे। तो अभी इसमें अगर हम देखते हैं कि प्यार और स्नेह का बैलेंस है तो जीवन कैसे सुखी बन सकता है, और जीवन में क्या क्या निशानियाँ दिखाई पड़ते हैं, उस व्यक्ति को जीवन में क्या क्या प्राप्तियाँ होती है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो होंगे उनके जैसे कि स्नेह और शक्ति का बैलेंस होने के कारण से है ना, उनके जजमेंट जो पावर है ना बहुत स्ट्रांग होती है, कब कहाँ कैसे क्या करना चाहिए, ये खूबी उनके जीवन में आती है। तो ऐसे व्यक्ति के पास में जैसे कि युक्तियुक्त जीवन होगा, हाँ युक्ति से चलेंगे, बाबा बोलते हैं ना युक्ति से ही मुक्ति मिलती है, तो कहाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये टेक्निक उनके पास में नेचुरल आ जाती है। ये दोनों और स्नेह और शक्ति का जो बैलेंस के साथ में बाबा से जो प्यार होती है, तो बाबा हम सबको शक्तिशाली तो नेचुरल बनाते हैं, तो उस समय हम युक्ति से चलते हैं, किसकी नब्ज को देख करके चलते हैं, उसकी नब्ज को देख करके हम फेस करते हैं उसके ऊपर, और उसका भी नुकसान ना हो तो अपना भी नुकसान ना हो, उसका भी कल्याण हो तो अपना भी हो, इस प्रकार से हमको ये खूबी आ जाती है। तो और तीसरी बातें हमने यहाँ देखा कि उनके पास में दुआओं का स्टॉक बहुत रहता है, क्योंकि किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया जीवन में, तो उसके कारण से सबकी दुआएं मिलती है, दुआओं से भरपूर रहती है वो आत्मा। तो इसीलिए दुआओं अगर कमाना है, दुआओं से भरपूर होना है, तो इसकी हमको पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों का बैलेंस अगर है तो हम सब समझते हैं कि इनके पास में दुआएं हैं। तो इसके बाद में हम देखते हैं ये जैसे कि पॉपुलर व्यक्ति बनेंगे, लोकप्रिय व्यक्ति, सब लोग मिसाल देंगे कि ऐसे होना है तो ऐसे बनो, उसको ये व्यक्ति ऐसा, ये सेंटर की दीदी ऐसी, ये जोनल हेड बहुत अच्छी है, इस तरीके से सबसे जैसे कि मुख से निकलेगा, अभी से गायन शुरू हो जाएगी, अभी से महिमा शुरू हो जाएगी। तो फिर उसके बाद में हमने देखा कि जैसे ऐसे व्यक्ति जो है ना खुशहाली जीवन वाले होंगे, जीवन में खुशी रहती है, जीवन में किसी प्रकार की कमी महसूसता नहीं होगी, बहुत मजे में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, खुशहाल जीवन होंगे इनके। तो इन सबको ऊंची नजर से देखेंगे, रिगार्ड बहुत मिलते हैं इनसे, तो उनको रिगार्ड भी बहुत मिलता है, सब लोग ऊंची नजर से ऊंची भावना से देखेंगे ऐसे व्यक्ति को, जैसे कि तालमेल बिठा के चलते हैं। तो उनके जीवन में ये भी देखा गया है कि वो सब सबके साथ सबका विकास, अपना भी विकास, आत्मा चढ़ती कला का अनुभव हो, इस है ना रूहानी जो उन्नति की, उनको सबको ध्यान रहता है। तो ये सब है कि स्नेह और शक्ति का जहाँ बैलेंस है, तो इस प्रकार की निशानी हम देखते हैं, जैसे कि हर चीजों में प्रगति का अनुभव होगा, जैसे कि प्रगति, जैसे कि उन्नति प्रगति हो रही है, तो दिखने में आता है कि इनके जीवन में व्यर्थ फालतू बातों से जैसे कि ये डिटैच हो गए हैं, तो हर कदम में प्राप्तियां हो रही है, हर सेकेंड हम उन्नति का अनुभव कर रहे हैं, प्रगति का अनुभव कर रहे हैं, हम सबको लगेगा। और उनके नदी जाने से, उनके रूटीन से, उनके व्यवहार से, उनके वचन से लगता है ये ऑनलाइन है अभी बाबा के साथ में कनेक्शन में जुटी हुई है, नहीं तो कभी कभी नेटवर्क फेल हो जाती है, तो पहले किया हुआ ही हम काम में लेते हैं, उस समय उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन हमारा नहीं रहता है। तो इसी रीति से हम सबको यह भी अनुभव होगा, तो रमणीक जीवन होगा उन सबके, जहाँ स्नेह और प्यार की निशानी रमणीक जीवन होगा, रूखा सूखा जीवन से वो बाहर आ जाती है आत्मा, रमणीकता वाले सबको अच्छा लगता है। तो रमणीक वाला व्यक्ति किसी को भी जैसे कि उस मूड में जाने नहीं देगा, वो सदा हंसा के है ना किसी न किसी बातों से, और मर्यादा के अंदर रह करके करने वाले होते हैं। तो ये सब हम सब देखते हैं। तो रमणीक जीवन अर्थात पहले जब सचिन भाई यहाँ पर आए थे तो हम सब ने देखे थे उनकी, 2003 में पहले दिन ही हम उनसे हम मिले थे, तो उनका जो बैराग्य है ना चरम सीमा पर थे तो उनको देखने से भी जैसे कि बैराग्य व्यक्ति जो खामोश होते हैं रुखा सुखा भी थोड़ी सी थी, तो उसके कारण से लोग खुल के बात करने की हिम्मत नहीं आती थी। तो धीरे धीरे अभी उन्होंने इतना अपने को डाल दिया, चेंज किया, तो हमारे उधर भट्टी के लिए उनको ले जाना था, तो हम लोगों ने प्रस्ताव रखे थे, तो प्रस्ताव कैसे कैसे करके उनके पास हो गई। तो लोग सोच रहे थे कि इनसे कैसे व्यवहार में हम आ जाए नजदीक, ये तो देखने में ऐसे डर लगता है, ऐसे सोचते थे। जब उन्होंने भट्टी करा के आए और लोग जो फीडबैक हमको मिला कि ये तो बहुत ऐसे कि हम लोग जो सोच रहे थे इससे तो कई गुना आगे हैं, ये जो हमने सोच के रखा था उसको सब अपोजिट, इन्होंने हंसना मुस्कुराना जैसे कि लोगों को कैसे कन्विंस करना, सब टेक्निक अभी इनके पास में है। देखने में ऐसा लगते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत प्यारे हैं बोल के उन्होंने। तो इस तरीके से उन सबकी जैसे कि लोगों ने जैसे फीडबैक दिए थे और बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकली थी इसमें। और ऐसे आत्माओं के जो जीवन भी निर्विघ्न जीवन होता है, किसी प्रकार की विघ्न जीवन में नहीं होती, क्योंकि सहस्रों ठोकर खाकर के ठाकुर बनने चले हैं तो फिर इस सब चीजों से वो जैसे कि अनुभव की अथॉरिटी होती है। और इसमें जैसे कि अपनापन देने की भावना रहता है, जो व्यक्ति ने जो चीज पाया है उसकी निशानी है, वो अपनापन देंगे, और अपनापन होने के कारण से वो अपनापन देकर के बाप के भी बनाएंगे और अपने सहयोगी भी बनाएंगे। तो अपनापन देना भी तो कोई छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि तभी दिया जा सकता है जब उसने आध्यात्मिकता के इतने सारे शिखर पार किया हुआ हो। ऐसे ही सोचने से कहने से नहीं होता है, अब उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए कई अभ्यास और कई अपने जीवन में वो चीज आई होगी, दिल में समाई होगी, तभी दिया जा सकता है। ऐसे सुपरफिशियली देते हैं तो कुछ समय के बाद में उसका रिजल्ट फिर उल्टा हो जाता है। इसीलिए दिल से दिया हुआ चीज कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता है। तो उसमें फिर लवली और शक्तिशाली जीवन होगा, नेचुरल योगी होंगे, निरंतर योगी होंगे, तो योग के लिए बार बार कोशिश नहीं करना पड़ेगा। जहाँ स्नेह और प्यार का जहाँ बैलेंस होगा, नेचुरल लाइफ होगी। हाँ, नेचुरल लाइफ अर्थात कोई भी चीज में जो हमको संघर्ष नहीं करना पड़ता है, नेचुरल लाइफ होता है। जहाँ स्नेह है और जहाँ शक्ति है, तो बाबा तो सब कुछ स्नेह देता है, लेकिन बाबा की स्नेह में शक्ति भी छिपी हुई, सर्वशक्ति छिपे हुए उसमें, जीवन को आगे बढ़ाने की सारी एनर्जी बाप के प्यार में छिपा हुआ है। इसलिए भगवान को प्यार का सागर कहते हैं, तो उस प्यार में सब कुछ समाया हुआ है। तो उसमें फिर हमने देखा है कि उनका जीवन जैसे कि इजी जीवन होती है और बिजी लाइफ होती, इसमें सदाई इजी रहते हो और बिजी लाइफ है, क्योंकि उनके पास भी ये चीज़ आ चुकी है और ये इस कारण से उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजी लाइफ माना उन्होंने सारे आध्यात्मिक और जो बाबा ने दिए गए श्रीमत की बातों को जीवन में ऐसे डाल दिए हैं कि अब तो ट्रेन पटरी पर ट्रेन चल रही है। पहले पटरी पर लाने तक के लिए तो मेहनत लगता ही है, पटरी पर जब गाड़ी ट्रेन चालू हो जाती है तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लवलीन स्थिति का नेचुरल अनुभव, लवलीन जीवन, और जैसे बाबा से हमने प्यार खींचे हैं तो सबको भी इसी नज़र से, इसी बाप से देखने की, और किसी की कमी कमजोरी कभी बर्डन नहीं करेंगे। वो ये सब मेरे हैं, अब सबकी कमी कमजोरी निकालने की जिम्मेवारी मेरी है और मैं उस जिम्मेवारी में कभी मुकर नहीं सकता हूँ, इनको करके दिखाना है। और बाबा ने जो इतने बड़ी जिम्मेवारी दी है, इस सबको फूल बनाने के लिए, कांटे तो सब है ही, कांटे समान जीवन तो सबकी थी, हम भी ऐसे थे, अब हम इतना बने हैं तो दूसरों को भी ऐसे बनाने की सदा ही अंदर में उमंग उत्साह, इस प्रकार की खुशी रहती है। इसीलिए हम सबको जो आध्यात्मिक पथ पर हम चलते हैं तो हमें बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी क्षेत्र में बैलेंस की आवश्यकता पड़ सकती है। स्नेह और शक्ति के बैलेंस अगर होता है तो कई सारी चीज़ों में हम बच सकते हैं और उस समय हमको परखने की शक्ति आ जाएगी। तो उस समय जैसे कि अभी बीच में हम लोग ने देखा था, रोड में चलते हैं तो भी हमको स्नेह और शक्ति का बैलेंस की क्यों जरूरत है? बाबा के बच्चों को, बाहर वालों को तो ये सब चीज़ों में कोई खबर भी नहीं, और ये सब चीज़ों के लिए अनभिज्ञ अनजान है, तो उन सबको हर दिन कोई ना कोई समस्या झेलने पड़ते हैं। तो उसी समस्या को झेलते हुए हम लोग ने देखा है, तो अभी ये जो रोड यहाँ बना रहे हैं, कई प्रकार के वायर भी डालते हैं, सेवरेज का काम भी चल रहा है, तो सुखधाम के आगे हमने उस दिन देखा था कि रास्ता बहुत छोटा था, एक गाड़ी आके वहाँ फंस गई। तो एक माउंट के दो भाई थे, मोटरसाइकिल में थे वो, तो मोटरसाइकिल भी फंस गई, गाड़ी भी अटक गई। तो मोटरसाइकिल पीछे बैठा था, उसने थोड़ा सा ड्रिंक्स लिया हुआ था, तो उसने गाड़ी वालों को गाली दिया। तो गाड़ी में तो पूरे फैमिली के लोग थे, तो कोई हमको ऐसे चलते चलते गाली दे उनको अच्छा थोड़ी लगता, अहंकार की तो बात है ही। तो बहनी और गाड़ी के जो अपने सारे लोग उतर के उस व्यक्ति को इतना धुलाई किए, हमारे आगे हम सब बीच में बैठे, अब कर क्या सकते, बीच में पढ़ भी तो नहीं सकते, तो अच्छी धुलाई की उसकी। और पीछे वाला आगे वाला बैठा है, गाड़ी थोड़ा आगे निकाला मुश्किल से, और व्यक्ति जो जिसकी पिटाई हुई थोड़ा गाड़ी के आगे खड़ा था। तो आगे खड़ा होने के कारण थोड़ा एक आध मिनट वो खामोश होकर बैठा खड़ा था। तो उसके बाद में उसने 5-6 पत्थर उस गाड़ी के ऊपर ऐसा मारा कि लोग को नहीं लगा, लेकिन गाड़ी को कांच चूर चूर कर दिया उस, और वो ऐसे पकड़ लिया स्पीड उसने कि कोई पकड़ ही नहीं सके। तो थोड़ा सा अगर उस स्नेह का अगर इस्तेमाल किया होता, सिर्फ प्रकट शक्ति का ही किया कि हमको ही कम है क्या भाई, यहाँ गाड़ी अटका हुआ है, होता तो हम निकाल लेते, एक मिनट रोको बोला होता ना, तो ये समस्या नहीं होती। तो अभी उनकी साइड सीन तो नहीं, फाइट सीन हो गया, तो वो सब अटक गया। अब इनकी कितना लंबा सफर करके कहाँ निकलना होगा, से गुजरात से आए हुए थे लगता है, गुजरात का नंबर था। तो इस तरीके से थोड़ी सी इसने होता तो फाइट में उनकी समय बर्बाद नहीं होती, और दो दिन तक गाड़ी के मेंटेन करने लग जाए, कहाँ ले जाना है, कुछ कांच कहाँ डालना है, तो हर जगह पर। तो एक बार हमारे भाई लोग भी सुना रहे थे कि पुलिस की गाड़ी आगे जा रही थी, हमारे भाई लोग ने भी कंपटीशन करके थोड़ा आगे लाने की कोशिश की, गाड़ी थोड़ा सा पुलिस के पास टच हो गया होगा। तो हमारे भाइयों ने थोड़ा सा, कहते हैं पुलिस के आगे और घोड़ा के पीछे ज़्यादा होना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें भी रिस्क होता है, तो उन्होंने रिस्क मोल लिया। थोड़ा कुछ हुआ ही नहीं, उतर के अपने भाइयों को दो चार थप्पड़ लगा दिए पुलिस ने। तो इसीलिए हम सबको थोड़ा सा इस सब चीज़ों में थोड़ा जाने दो, उनको कोई बात है, हम अपने बैलेंस से अपने हिसाब से चले। इस सभी चीज़ों में हम सबको कहीं ना कहीं इस सब चीज़ें हो जाता है तो इस सब चीज़ों का रोना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम सब जाने कि बाबा ने हम सबको कहाँ कब क्या करना चाहिए। अगर हमारा कनेक्शन ठीक है तो बाबा उसी समय टच करता है, थोड़ा अभी छोड़ो इस सबको, थोड़ा सा रुक के जाओ, क्या बिगड़ता है, आगे जा करके क्या पाओगे, बाबा की याद में चलो, जाते हैं तुम्हारा सफलता होना ही है। तो इस तरीके से हमको देखना होगा किसी भी क्षेत्र में, सेंटर से लेकर के उद्योग धंधा बंद व्यापार, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारे जितने भी भाई बहन हैं परिवार में जुड़े हुए हैं, तो ये बैलेंस को अगर अपनाया जाए तो उस समय उस बात में न उलझ करके अपनी तपस्या साधना में निरंतर हम व्यस्त रह सकते हैं और अपनी स्थिति को मजबूत तथा शक्तिशाली बना सकते हैं। तो ये जो बैलेंस की जो बातें, कुछ अनुभव, कुछ चिंतन के जरिए आप सबके बीच में हमने शेयर किया है, तो जिस हिसाब से तैयारी थी, दो तीन दिन का टाइम था, इसीलिए कुछ बातें अपने अंदर से चिंतन करके निकालने का यह भी मौका मिला। तो आप सबके बीच में ये बातें हमने जितना हो सके सुनाने की कोशिश की है। तो इतने में ओम शांति।